नमस्कार, बोधि वार्ता में आप सभी का स्वागत है। अस्तित्व क्या है, अनुभव क्या है, अनुभव का अनुभव करता कौन है और अनुभव कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और ये जो अनुभव कर रहा है वो क्या है, उसके क्या लक्षण है। अस्तित्व क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये एक बहुत मौलिक प्रश्न है और काफ़ी लोगों के मन में ये प्रश्न आया होगा, लेकिन उसका उत्तर कैसे ढूंढना है किसी को मालूम नहीं होता। इधर उधर पूछते हैं, कभी किसी किताब में ढूंढते हैं और कोई एक धारणा, कोई एक मान्यता बना लेते हैं कि हाँ ये होना चाहिए। यदि आप देखें तो जो भी आपका अनुभव है वही अस्तित्व है, या फिर आप कह सकते हैं कि अनुभव की एक श्रृंखला है अस्तित्व। अस्तित्व शब्द अस्ति इसमें है, इसका मतलब होना। जिस बात का अनुभव होता है वो बात होती है, वो वस्तु आपके सामने उपस्थित होती है, स्थित होती है और कह सकते हैं कि वो है। आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ को ले लें, उसका अस्तित्व उसका अनुभव भर है। यदि किसी बात का अनुभव हो सकता है तो अस्तित्व में है, उसका ज्ञान संभव है क्योंकि अनुभव है। इसलिए आप समझ गए होंगे कि ज्ञान के लिए सबसे बड़ी निर्णायक बात है वो अनुभव ही है, अपरोक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव, और थोड़ा बहुत अनुमान लगा के आप तार्किक तरीके से किसी बात का ज्ञान कर सकते हैं, लेकिन अनुभव पहला है। क्योंकि किसी बात का होना, उसका अस्तित्व होना उसके अनुभव होने पर निर्भर है। अस्तित्व कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, ये जो आपके जो अनुभव हैं तरह तरह के वही है। अनुभव क्या है, अनुभव वो है जो हो रहा है। अस्तित्व और अनुभव में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अस्तित्व ही अनुभव है और अनुभव वो है जो अस्तित्व में है। यदि कोई चीज़ अस्तित्व में है तो उसका अनुभव होगा, यदि वो अवास्तविक है तो उसका अनुभव नहीं होगा। कोई अनुभव है तो आप कह सकते हैं कि उस अनुभव का अस्तित्व है। तो अस्तित्व और अनुभव एक ही चीज़ है, उसको दूसरे किसी शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसे ही आप कहेंगे कि अनुभव कुछ और है जो अस्तित्व में नहीं है, तो फिर वो एक अर्थहीन बात होगी। पहली शर्त जो है अनुभव की, कि कुछ अस्तित्व में होना चाहिए, उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि उसका अनुभव है। अस्तित्व की भी यही एक परिभाषा है कि यदि किसी बात का अनुभव है तो वो है। तो आप देखेंगे अस्तित्व और अनुभव एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हमें तीन तरह के अनुभव हो रहे हैं। वस्तुओं का अनुभव, जिसे हम जगत कहते हैं, तरह तरह की वस्तुएं। दूसरा शरीर का अनुभव और तीसरा मन का अनुभव, मानसिक अनुभव। तो ये सारी चीज़ें अस्तित्व में हैं। यदि आप और ढूंढने जाएंगे तो आपको कुछ और अनुभव नहीं मिलेगा। यदि आप किसी अनुभव का उदाहरण लाना चाहें जो इन तीन वर्गों में नहीं हो, तीन तरह की नहीं हो, तो आप देखेंगे कि वो संभव नहीं है। मूलभूत वर्गीकरण है आपके अनुभवों का, और इसीलिए हम कहते हैं कि यही सब अस्तित्व में है। जगत, शरीर और मन, मानसिक अवस्थाएं, मानसिक प्रक्रियाएं या चित्त की वृत्ति। इसके बाद आप देखेंगे कि शरीर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो जगत का भाग है जो शीशे में दिखाई देता है, बाकी लोगों को दिखाई देता है, एक रचना है, एक रूप है, उसको हम जगत का भाग कह सकते हैं। और एक शरीर जो है, जो उसका आभास है, उसका अनुभव मानसिक है, उसको हम मानसिक अनुभव में डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे दो तरह के अनुभव रह गए। तो मन जो है वो इतना सही शब्द नहीं है, तो चित्त हम उपयोग में लाते हैं इसके लिए। आप देखेंगे कि जगत भी चित्त की एक वृत्ति है, चित्त का ही एक भाग है, चित्त में ही एक आकृति है जगत। तो आप देखेंगे कि अनुभव को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि तीनों भाग एक ही तरीके हैं। सिर्फ अनुभव है यहाँ पर, तीन तरीके के अनुभव आपके सुविधा के लिए है बना दिए गए हैं, कि वर्गीकरण कर दिया गया है ताकि बात करने में उनका अध्ययन करने में आसानी होती है। यदि हम अपने पांच तरह के प्रश्न अनुभव पर लगाएं या अस्तित्व पर प्रयोग करें तो देखें क्या उत्तर मिलते हैं उसके। और वो पांच प्रश्न आपको पता ही होंगे, जो हमने पिछले बार उसके विस्तार में चर्चा की थी, वो हैं क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन और कितना। तो ये सात तरीके के प्रश्न मैंने बताए थे कि काफ़ी होते हैं, किसी भी चीज़ का अध्ययन करने के लिए, किसी भी चीज़ की जांच करने के लिए, यदि यह प्रश्न आप अनुभव के ऊपर लगाते हैं तो देखें क्या उत्तर आता है। तो यदि मैं कहता हूँ अस्तित्व क्या है, तो उत्तर आता है कि वो अनुभव है। अस्तित्व और अनुभव एक ही है। यदि मैं पूछता हूँ अस्तित्व क्यों है, तो आप देखेंगे उसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि क्यों का आपने जान ही लिया है कि उत्तर क्या होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए। अब आप कोई कारण यदि ढूंढ के लाते हैं अस्तित्व होने का, तो वो कारण अस्तित्व में ही होगा, अस्तित्व के अंदर होगा, उसके बाहर नहीं होगा। तो आमतौर से आप देखेंगे कि किसी भी अनुभव का या किसी भी चीज़ का कारण जो होता है वो चीज़ के बाहर होता है, वो चीज़ स्वयं कारण नहीं होती उसके होने का। ये हमारा दैनिक अनुभव है, रोज का अनुभव है। लेकिन आप ये कारण यदि अस्तित्व के ऊपर प्रयोग करना चाहेंगे इस प्रश्न का कि अस्तित्व क्या कारण है, तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी कारण होगा उसका वो अस्तित्व के अंदर होगा। जैसे ही मैं कहता हूँ अस्तित्व के बाहर भी एक कारण है उसके होने का, तो वो कारण एक बड़े अस्तित्व का भाग है। फिर इस प्रश्न का उत्तर एक ही आता है कि अस्तित्व बस है, वो स्वयं अपना कारण है। यही बात अनुभव पर भी है कि वो स्वयं अपना कारण है, उसके होने का कोई कारण नहीं है, उस अनुभव के बाहर नहीं है। यदि वो कारण होता है उसका, तो उसका अनुभव होगा और फिर उसका कारण आपको नहीं मिलेगा। कहाँ है अस्तित्व? तो आप देखेंगे कि इसका उत्तर बहुत आसान है कि जो भी है यहाँ है या हर जगह है। अस्तित्व किसी जगह पर नहीं है, एक जगह अस्तित्व और दूसरी जगह नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप ढूंढने जाएंगे ऐसी जगह जहाँ अस्तित्व नहीं है, तो वो भी अस्तित्व में का ही भाग होगी। तो आप देखेंगे कि असंभव है ये कहना कि अस्तित्व यहाँ है और यहाँ नहीं है, उसकी एक जगह उसका एक देश बताना असंभव है। क्योंकि आप दो ही बातें कह सकते हैं कि या तो हर जगह है या फिर यहाँ है। अस्तित्व कब से है, उसकी शुरुआत कब से हुई और कब तक चलेगा? कब का अर्थ ये होता है कि उसका कोई समय की ओर इशारा करता है ये प्रश्न। जैसे ही मैं कहता हूँ कि ये इस समय से शुरू हुआ है अस्तित्व का अस्तित्व, तो वह समय पहले से ही अस्तित्व में था। यदि आप कहेंगे कि ये एक अनुभव इस समय से शुरू हुआ है, तो वो समय जो है वो पहले से ही अनुभव में था। यदि आप मान लेंगे कि हाँ इस समय से शुरू हुआ है, तो वो मान्यता हो गई, वो एक भ्रांति या विपर्य हो गया, विकल्प हो गया। वो आप अनुभव नहीं कर सकते कि अस्तित्व कब से शुरू हुआ, क्योंकि आपका होना आवश्यक है अस्तित्व के पहले। यदि आप हैं तो अस्तित्व पहले से है। तो आप देखेंगे कि कब प्रश्न भी इस पर लागू नहीं होता है, यानी कि उसका कोई उत्तर नहीं आता। और ज़्यादा से ज़्यादा इतना कह सकते हैं कि अस्तित्व हमेशा से है, चिरस्थाई है, ये आता जाता नहीं है, हमेशा रहेगा। अगला प्रश्न आप कर सकते हैं कि ये कैसे है, अस्तित्व का जन्म कैसे हुआ? कैसे का अर्थ होता है कि एक प्रक्रिया ढूंढना, ये अस्तित्व की प्रक्रिया, किस प्रक्रिया के द्वारा अस्तित्व में आया है। तो आप देखेंगे कि जो दैनिक चीज़ें हैं उनकी प्रक्रिया ढूंढी जा सकती है, लेकिन अस्तित्व की स्वयं की कोई प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप कहेंगे कि ये प्रक्रिया है जिसकी वजह से अस्तित्व है, तो प्रक्रिया पहले से ही अस्तित्व का भाग होगी। अस्तित्व के बाहर कोई प्रक्रिया संभव नहीं है। अस्तित्व कितने हैं? तो आप देखेंगे एक ही है, उसकी गिनती भी संभव नहीं है। बस इतना ही है जितना है अनुभव है। कितने अनुभव हैं? एक ही अनुभव है। अनुभव के प्रकार कई हैं, लेकिन अनुभव एक ही है। जो अस्तित्व में है वही अनुभव है। तो अस्तित्व कौन है, इस बात का कोई सार्थक जवाब नहीं मिलता, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मैं अस्तित्व का कारण या अस्तित्व के पीछे जो है वो बता सकूं, कह सकूं कि ये व्यक्ति इसके पीछे है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्तित्व के पीछे सिर्फ अस्तित्व है। अस्तित्व का धरातल भी अस्तित्व ही है। अस्तित्व की नींव भी अस्तित्व है। तो आप देखेंगे कि जो प्रश्न है वो सारे जो है अर्थहीन है। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अस्तित्व है और ये अनुभव के बराबर है। क्या प्रश्न का उत्तर आप अनुभव के शब्दों में कह सकते हैं, लेकिन उसके आगे कुछ भी कहना संभव नहीं होता अस्तित्व के बारे में। यदि आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि अस्तित्व के अलावा, अनुभव के अलावा भी एक और चीज़ है जो कि हम ज़्यादातर गिनते नहीं हैं। जब हमारा ध्यान बाहर की ओर होता है तो हम सिर्फ जगत और शरीर और मन को ही देखते हैं। एक और अस्तित्व का काफ़ी रुचिकर भाग है, वो है अस्तित्व का अनुभव करने वाला, अनुभवकर्ता। यदि अनुभव है तो वो किया जा रहा है और उसका एक कर्ता होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो अस्तित्व है और अस्तित्व का अनुभव करने वाला भी है। अस्तित्व की चेतना है, अस्तित्व का ज्ञान है, तो उसका अनुभव कर्ता भी होना चाहिए। ये अनुभव किसको हो रहे हैं? यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो वो उत्तर है कि एक अनुभव कर्ता है जो कि अस्तित्व ही है और उसको ही अनुभव हो रहे हैं। यदि वो अस्तित्व के बाहर होता तो समस्या हो जाती, क्योंकि फिर दो अस्तित्व हो जाते और दो होना संभव नहीं है। वो एक बड़े अस्तित्व का भाग हो जाता, अनुभव और अनुभव करता दोनों मिला के एक बड़ा अस्तित्व हो जाता। तो आप देखेंगे कि जो अनुभव है तीन तरह के, जिसको हम आमतौर से अस्तित्व कहते हैं, अनुभव करता उससे अलग है लेकिन वो अस्तित्व का ही भाग है। तो कह सकते हैं कि क्योंकि अनुभव है तो अनुभव करने वाला भी होना चाहिए और इसीलिए अनुभव करता का जन्म होता है। तो ये हमारा अप्रोक्ष अनुभव है कि अनुभव हो रहे हैं और वो उसका एक अनुभव करता है, जिसे कभी कभी हम मैं का नाम देते हैं कि मैं ही अनुभव करता हूँ। आप देखेंगे कि मैं भी एक अवधारणा है जो कि चित्त में होती है। इस बारे में बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये मैं क्या है, लेकिन आप अभी देख सकते हैं कि सारे अनुभवों का एक अनुभव करता भी है। और एक तीसरी बात भी है यहाँ पे छुपी हुई कि क्योंकि एक अनुभव है, अनुभव करता उससे अलग है, तो वो अनुभव अनुभव करता को कैसे हो रहे हैं? यदि आप एक धारणा बीच में लाना चाहें तो आप देखेंगे कि दोनों के बीच में एक अनुभव क्रिया है। आप कह सकते हैं कि अनुभव जो है अनुभव क्रिया के द्वारा अनुभव कर्ता को हो रहे हैं, लेकिन ये सब अस्तित्व का ही भाग है। तीनों हमने तीन भागों में और बांट दिया इसको। तो कह सकते हैं कि अनुभव जो है अनुभव कर्ता को हो रहे हैं और इसका कारण अनुभव क्रिया है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अनुभव और अनुभव कर्ता भिन्न है, क्योंकि चित्त उनको विभाजित करता है, अस्तित्व को दो भागों में विभाजित करके कहता है कि एक तरफ अनुभव है, एक तरफ अनुभव कर्ता है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ अनुभव क्रिया है, अनुभव होने की क्रिया, एक तरह की क्रिया चल रही है जिसकी वजह से हमें अस्तित्व का ज्ञान हो रहा है, और वही मात्र है। तरह तरह के अनुभव हैं, वो सभी अनुभव क्रिया के द्वारा हो रहे हैं और सभी अनुभवकर्ता को हो रहे हैं। यदि मैं अनुभव और अनुभवकर्ता को भी अनुभव क्रिया में मिला दूं, हम देखेंगे कि अनुभव और अनुभवकर्ता अनुभव क्रिया में विलीन हो जाते हैं, उनसे अलग नहीं दिखाई देते, सिर्फ अनुभव क्रिया है यदि आप ध्यान से देखेंगे तो। इसको हमारे ऋषि मुनियों ने और प्राचीन काल में दृश्य दृष्टा और दृष्टि भी कहा है। जो दृश्य अनुभव है, दृष्टा अनुभव करता है और दृष्टि अनुभव क्रिया है। मैंने उनको अनुभव अनुभव करता और अनुभव क्रिया का नाम दिया है, क्योंकि दृष्टि कभी कभी लोग सिर्फ देखने वाले अनुभव से समझ लेते हैं कि जो आंखों से हो रहा है अनुभव वही दृष्टि है, उसका अर्थ जो है वह अभी सीमित हो गया है इस शब्द का, दृष्टि का। लेकिन संस्कृत में दृष्टि वो एक तरह का अनुभव है, सिर्फ आंखों से होने वाला नहीं, हर तरह का अनुभव दृष्टि है। तो आप पुस्तकों में देखने जाएंगे, शास्त्रों में, तो आपको ये दृश्य दृष्टि और दृष्टा, ये तीन चीज़ें मिलेंगी अस्तित्व में। इन्हीं का नाम अनुभव अनुभव क्रिया और अनुभव कर्ता मैंने रख दिया है, ताकि किसी तरह का भ्रम नहीं हो कि जो आंखों से होता है वो तो दृष्टि है, वो अनुभव है, बाकी तरह के अनुभव जो है जैसे मानसिक अनुभव वो क्या है। तो इस तरह की भ्रांति से बचने के लिए मैंने अनुभव शब्द का उपयोग किया है। अनुभव और अनुभव कर्ता सिर्फ एक अनुभव क्रिया है और अनुभव क्रिया सिर्फ अस्तित्व है। इस तरह से अस्तित्व की परिभाषा हम कर सकते हैं कि पहले तो मैंने आपको कहा कि अस्तित्व सिर्फ अनुभव है, लेकिन हमने देखा कि एक उसका अनुभव भी हो रहा है, अस्तित्व का भी अनुभव है। इसकी वजह से एक नई धारणा हमें बनानी पड़ती है कि उसका अनुभवकर्ता भी है अनुभव का। लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अनुभव और अनुभवकर्ता में कोई फर्क नहीं है, वो सिर्फ अनुभव क्रिया है। तो इस तरह से हम अस्तित्व की परिभाषा पर आते हैं कि अस्तित्व और अनुभव क्रिया एक ही चीज है, यही बस है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? आप दे सकते हैं कि एक अनुभव क्रिया है जो कि दो भागों में आपको विभाजित कर सकते हैं, एक अनुभव और दूसरा अनुभव कर्ता, आपकी अपनी सुविधा के लिए। क्योंकि हम यदि विभाजित करेंगे तो आपको आसान रहता है समझना, उसके बारे में कुछ कहना, उसकी व्याख्या करना। अनुभव या अस्तित्व के बारे में हमने चर्चा की, कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश की। अब यही प्रश्न हम अनुभवकर्ता पर भी लगाते हैं, प्रयोग करते हैं और देखते हैं क्या उत्तर आते हैं। तो अनुभवकर्ता क्या है, वो जिसको अनुभव हो रहे हैं वो अनुभव करता है। और हम देखेंगे एक तरह की धारणा है, क्योंकि अस्तित्व में सिर्फ अनुभव क्रिया है, अनुभव करता उससे अलग नहीं है। अस्तित्व से जो अनुभव कर रहा है वो एक तरह की धारणा है, जो साक्षी है वो एक तरह की धारणा है। लेकिन समझने के लिए बहुत आसान रहता है यदि आप मान लें कि साक्षी जो है, जो साक्ष्य है या दृष्टा दृश्य से भिन्न है, यदि आप मान लें तो उसका अध्ययन उन प्रश्नों का उत्तर आसान हो जाता है देना। जो प्रश्न जो उत्तर हमें अस्तित्व के लिए मिले हैं वही उत्तर हमें अनुभवकर्ता के लिए भी मिलेंगे। तो देखें अनुभवकर्ता क्या है। जो अनुभव कर रहा है वो अनुभवकर्ता है। अनुभवकर्ता कहाँ है तो आप देखेंगे कि जहाँ पर भी अनुभव है वहाँ पर अनुभवकर्ता है। यदि आप ऐसी जगह ढूंढने जाएंगे कि जहाँ अनुभवकर्ता नहीं है तो उस जगह का आपको प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, और एक बार प्रत्यक्ष अनुभव हो गया तो वहाँ अनुभवकर्ता पहले से है। तो आप देखेंगे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ अनुभवकर्ता नहीं हो, या फिर आप कह सकते हैं कि वो सब जगह है, जैसे कि अस्तित्व है। और आप ये भी कह सकते हैं कि अनुभवकर्ता यहाँ है, यहाँ इसी वक्त है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है उसको ढूंढने के लिए। कोई वस्तु नहीं है जो एक जगह हो और एक जगह न हो। कहाँ प्रश्न लागू नहीं होता है अनुभवकर्ता पर, जिस तरह से अस्तित्व पर भी लागू नहीं था, ठीक उसी तरह। तो ये कहना हमेशा गलत होता है कि अनुभवकर्ता एक जगह है और एक जगह नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं कि एक जगह है जहाँ पर अनुभवकर्ता नहीं है तो उसका प्रमाण आपका अनुभव ही होना चाहिए, और वह अनुभव हो गया इसका मतलब अनुभवकर्ता की वजह से ही हुआ है, तो उस जगह पर भी अनुभवकर्ता है। तो आप देखेंगे तार्किक दृष्टि से संभव नहीं है अनुभवकर्ता का नहीं होना किसी जगह। या फिर आप कह सकते हैं कि जो देश है, देश की सीमाओं से मैं नहीं बांधा जा सकता अनुभवकर्ता को, देश की सीमाओं से ऊपर है अनुभवकर्ता। वस्तुओं का की जगह होती है, वस्तुओं के लिए कहाँ शब्द प्रश्न प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन जो अनुभव वस्तुओं का अनुभव कर रहा है उसके लिए कोई स्थान नहीं है, उसका कोई स्थान नहीं है। या आप कह सकते हो सभी स्थानों पर है, स्थित है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो अनंत है या असीम है, क्योंकि कोई सीमा नहीं दिखाई देती, क्योंकि जो हर जगह हो उसकी क्या सीमा होगी। तो जैसा अस्तित्व है वैसा अनुभवकर्ता भी है, जैसा अनुभव है वैसा अनुभवकर्ता भी है। और यदि आप प्रश्न करेंगे कि ये कब से शुरू हुआ या कब अस्तित्व में आया और कब अस्तित्व से जाएगा, यदि आप उसका कोई समय तारीख निकालते हैं कि इस तारीख से, इस समय से अनुभवकर्ता का अस्तित्व शुरू हुआ, तो उस समय में, उस पल में उसकी शुरुआत होने का कोई प्रमाण होना चाहिए, और वो प्रमाण किसी का अनुभव ही होगा, इस बात का कोई साक्षी होना चाहिए। और यदि वहाँ पे साक्षी है तो अनुभवकर्ता पहले से मौजूद है, पहले से ही वहाँ स्थित होगा, जो देख रहा होगा कि अनुभवकर्ता का जन्म कब हुआ और वो कब से शुरू हुआ। अनुभवकर्ता का प्रारंभ देखने के लिए अनुभवकर्ता की आवश्यकता होगी, नहीं तो धारणा मात्र होगी, एक मान्यता होगी कि हाँ ये वहाँ से शुरू हुआ, इस समय से शुरू हुआ, इस तारीख से शुरू हुआ। तो आप देखेंगे कि कहाँ प्रश्न भी लागू नहीं होता अनुभवकर्ता पर, या हम कह सकते हैं कि वो है, हमेशा से है अनुभवकर्ता, या आप कह सकते हैं कि वो समय के परे है, समय अनुभवकर्ता में है। तो जैसा कि आपने अस्तित्व के बारे में देखा कि समय अस्तित्व में है, अस्तित्व समय में नहीं है, ठीक वैसा ही हमें अनुभवकर्ता के बारे में भी दिखाई देता है। जो दृष्टा है वो समय के परे है, वो हमेशा से है और समय का अनुभव करता है, समय एक अनुभव है, जो अनुभव करता है वो पहले है समय के। या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं है जब अनुभवकर्ता नहीं है। तो अगला यदि आप प्रश्न करें अनुभवकर्ता के बारे में कि अनुभवकर्ता कैसे है, किस प्रक्रिया के द्वारा अनुभवकर्ता का जन्म होता है, कोई प्रक्रिया नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि जैसे ही आप कहेंगे इस प्रक्रिया के वजह से अनुभवकर्ता है तो उस प्रक्रिया का प्रमाण आपको चाहिए रहेगा, प्रक्रिया का साक्षी चाहिए रहेगा, आवश्यकता रहेगी उसकी, नहीं तो सिर्फ एक भ्रांति, एक विचार और एक मान्यता भर होगी वो प्रक्रिया, उसका साक्षी नहीं होगा। तो और जैसे ही उस प्रक्रिया का साक्षी होगा आप कह सकते हैं कि अनुभवकर्ता जो दृष्टा है वो पहले से वहाँ होगा। तो अब उसकी प्रक्रिया क्या हो, क्या है, वो जानना आपके लिए जरूरी हो जाएगा, और ऐसे आप करते जाएंगे, अनंत एक श्रृंखला बन जाएगी, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी प्रक्रिया क्या है अनुभवकर्ता के होने की। कैसे प्रश्न है वो भी लागू नहीं है अनुभवकर्ता के लिए। यदि मैं कहता हूँ अनुभवकर्ता कौन है, तो किसी व्यक्ति की ओर इशारा करेगा उत्तर, लेकिन व्यक्ति स्वयं एक अनुभव होगा। यदि वो व्यक्ति अनुभव है तो उसका अनुभवकर्ता होगा, तो यदि व्यक्ति अनुभवकर्ता नहीं है, अनुभवकर्ता अलग है व्यक्ति से, तो अनुभवकर्ता व्यक्ति नहीं है कि किसी व्यक्ति के रूप में अनुभवकर्ता की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्ति अनुभव हो गया, उसका अनुभव होना चाहिए व्यक्ति का, और अनुभव जब होगा तो अनुभवकर्ता आपको भिन्न दिखेगा व्यक्ति से। यदि मैं पूछूं कि कितने अनुभवकर्ता हैं, तो उसका जवाब भी आपको एक ही आएगा, जो कि अस्तित्व के बारे में आया था कि एक ही है, आप दूसरा अनुभवकर्ता नहीं ला सकते। यदि आप प्रयोग करना चाहें कि हाँ दूसरा अनुभवकर्ता भी है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हैं जो बहुत से अनुभवकर्ता भी होने चाहिए, सभी कह रहे हैं कि मुझे भी अनुभव होता है, तो यहाँ भी अनुभवकर्ता है। जैसा कि आपने कौन प्रश्न के उत्तर में देखा कि अनुभवकर्ता व्यक्ति नहीं है, तो व्यक्ति के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जितने व्यक्ति है उतने अनुभवकर्ता है, ये बोलना गलत होगा, क्योंकि व्यक्ति और अनुभवकर्ता भिन्न है। आप देखेंगे कि आपके अनुभव में एक ही अनुभवकर्ता है। यदि मैं कहूँ कि नहीं मैं दूसरा अनुभवकर्ता भी ला सकता हूँ, तो वो अनुभवकर्ता उस अनुभवकर्ता का जो है अनुभव होगा, और वो अनुभव में बदल जाएगा। अनुभवकर्ता हमेशा यहाँ होगा जहाँ वह हमेशा होता है, दूसरा अनुभवकर्ता सिर्फ अनुभव हो जाएगा। तो आप देखेंगे दो अनुभवकर्ता असंभव है, ये बात संभव नहीं है। जब दो नहीं हो सकते तो 100 भी नहीं हो सकते, 1000 भी नहीं हो सकते। तो बहुत बड़ी भ्रांति है एक लोगों में कि एक व्यक्ति एक अनुभवकर्ता, ऐसा वो मानते हैं, लेकिन ये मान्यता है। आप अपने अनुभव से देखेंगे, उसका प्रमाण यदि आप खोजने का प्रयत्न करेंगे तो आपको उसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। अनुभवकर्ता सिर्फ एक है, सिर्फ आपको यही ज्ञान हो सकता है, इससे ज़्यादा आपको ज्ञान नहीं हो सकता अनुभवकर्ता के बारे में, यदि आप कितना प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। तो यदि कोई चीज़ एक ही है तो उसको गिनना भी अर्थहीन है, क्योंकि वही है, दूसरा नहीं हो सकता। ये सारे प्रश्न अनुभवकर्ता पर लागू नहीं होते, इनके जो उत्तर हैं करीब करीब अर्थहीन से हैं, कि जो प्रश्न हैं उनके उत्तर जो चित्त या बुद्धि ढूंढ के लाती है, वो ना अस्तित्व पर लागू होते हैं वो उत्तर, ना अनुभव पर, ना अनुभवकर्ता पर, और अनुभव क्रिया पर भी नहीं, क्योंकि अनुभव क्रिया भी एक ही है, दो अनुभव क्रियाएं नहीं हो सकती, या अनुभव क्रिया की प्रक्रिया नहीं हो सकती। फिर भी इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना बहुत उपयोगी है, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी बात समझ में आएगी कि अस्तित्व, अनुभव, अनुभव क्रिया और अनुभवकर्ता, यदि मैं ये 7 प्रश्न उनके ऊपर करता हूँ, तो आप देखेंगे उनके उत्तर करीब करीब एक जैसे ही आपको मिलते हैं, वही उत्तर इन सभी के लिए आपको मिलेंगे। कहाँ प्रश्न का उत्तर भी सभी के लिए अनंत है और इसी जगह है, और ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ अस्तित्व ना हो, जहाँ अनुभव ना हो, जहाँ अनुभव क्रिया और अनुभवकर्ता ना हो। क्यों का उत्तर और कैसे का उत्तर सभी का आपको लगभग उतना ही मिलेगा, सिर्फ क्या प्रश्न का उत्तर जो है आपको थोड़ा थोड़ा भिन्न मिलेगा। लेकिन आपने देखा अस्तित्व अनुभव एक ही है, क्या प्रश्न का उत्तर अस्तित्व क्या है और अनुभव क्या है, उसका उत्तर एक ही आता है कि जो हो रहा है अस्ति वही है। तो अनुभव और अस्तित्व एक ही है, अनुभवकर्ता और अनुभव क्रिया भी अस्तित्व ही है और इसीलिए एक ही है। तो काफी एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात आप खोजेंगे यदि आप इन चारों धारणाओं के ऊपर प्रश्न करेंगे कि ये चारों एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। आपने देखा अस्तित्व और अनुभव एक ही है, तो हम उनको एक ही शब्द उसके लिए उपयोग मिला सकते हैं, वो है अनुभव। और आपने देखा कि जो अनुभव क्रिया है और अनुभवकर्ता वो एक ही है, अनुभवकर्ता सिर्फ अनुभव की क्रिया है, जो अनुभव कर रहा है वो अनुभवकर्ता है, वो उसकी परिभाषा है। अंत में आप देखेंगे कि अनुभव क्रिया और अनुभव एक ही है, या आप देखेंगे कि अनुभव और अनुभवकर्ता अनुभव क्रिया में विलीन हो जाते हैं। उनमें जो भेद करने वाला है वो चित्त है, वो हमारी सुविधा के लिए है, ताकि आप उनको अलग अलग भागों में बांट कर यदि उसका अध्ययन करें तो आसान हो जाता है प्रश्न के उत्तर ढूंढना। लेकिन आप अपने अनुभव से, आपके अपरोक्ष अनुभव से या प्रमाण उसका ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि सभी के उत्तर एक ही आते हैं। फिर आपके मन में एक बात उठेगी कि एक ही क्यों हैं सबके उत्तर, उसका अर्थ एक ही है कि क्योंकि ये तीनों चारों चीज़ें या दो चीज़ें जो मैंने बताई वो एक ही चीज़ है, ये सारे शब्द एक ही अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। सो ये जो भेद हैं वो सिर्फ सुविधा के लिए हैं, या फिर भ्रांति है, या फिर अज्ञान है। तो चित्त ये भेद करता है अस्तित्व में और फिर समझता है कि ये सब भिन्न है एक दूसरे से और इस उलझन में रहता है। यदि आप इस पर प्रश्नों की रोशनी डालें, प्रश्नों के प्रकाश में आप देखेंगे कि उनके उत्तर एक जैसे ही आते हैं, जिसका कि अर्थ ये है कि वो हमेशा एक ही मिलेंगे। इसीलिए उसको दो नहीं कहा गया है, या फिर अद्वैत। द्वैत का मतलब दो और अद्वैत का मतलब एक। आप एक और चीज़ ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगी, वो है कि आपको जो दृष्टि है हमेशा दृष्टा और दृश्य के रूप में ही मिलेगी, क्योंकि सारे अनुभव चित्त के माध्यम से हो रहे हैं, तो वो उनको बांट ही देता है दो में। एकता का अनुभव संभव नहीं है। जैसे ही अनुभव होगा तो अनुभवकर्ता का भी अनुभव वहां पर होगा, या एक अनुभव क्रिया भी आपको दिखेगी, या फिर आप कह सकते हैं कि अनुभव क्रिया ही अस्तित्व है, अनुभव क्रिया ही उस एकता का नाम है। शब्दों में इसको डालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि जो हमारी भाषा है वो वस्तुओं के लिए, जगत के अनुभव के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जब आप उसी भाषा का उपयोग करते हैं मौलिक प्रश्नों के उत्तर के लिए तो थोड़ा कठिन हो जाता है। जो भी अनुभव हो रहा है वो अस्तित्व है, जो भी अस्तित्व है वो अनुभव में है। यदि उसका अनुभव नहीं होता है तो अस्तित्व में नहीं है, उसको होना नहीं कह पाएंगे हम। और यदि अनुभव है तो उसको एक अनुभवकर्ता भी होगा जिसको वो अनुभव हुआ है, और आप देखेंगे कि उनमें कोई भेद नहीं है, सिर्फ एक अनुभव क्रिया है। और यदि अनुभव ही अस्तित्व है और अनुभव सिर्फ अनुभव क्रिया है तो अस्तित्व सिर्फ अनुभव क्रिया है। ये आप इस तरह का तर्क उपयोग में ला सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि सिर्फ एकता है, ये भाग उसमें नहीं है, चित्त ये भाग कर रहा है और चित्त अनुभव है, अस्तित्व का ही एक भाग है। तो अस्तित्व अपने अंदर ही भेद कर रहा है और अस्तित्व खुद को अनुभव कर रहा है। कभी वह अनुभवकर्ता के रूप में खुद को देखता है, कभी अनुभव के रूप में देखता है, कभी कहता है कि मैं अनुभव क्रिया हूं। स्थिति बदलती रहती है अस्तित्व की, और आप देखेंगे अस्तित्व नहीं बदलता, चित्त बदलता है, चित्त की स्थिति बदलती है। चित्त का ध्यान जो है कभी एकता की तरफ होता है, कभी अनुभव की तरफ होता है, जो उसको अपने से भिन्न दिखाई देते हैं, अपने से बाहर दिखाई देते हैं कि मैं चित्त यहाँ हूँ, अनुभव वहाँ है। कभी वो अपने आप को अनुभवकर्ता के रूप में देखता है कि नहीं तो अनुभवकर्ता हूँ मैं, अस्तित्व का अर्थ अनुभवकर्ता लगाता है कभी वो चित्त, कभी वो दोनों को आपस में जोड़ देता है, दोनों का योग कर देता है, अनुभव और अनुभवकर्ता का। चित्त स्वयं विलीन हो जाता है अनुभव क्रिया में, अपने आप को एक अनुभव क्रिया के रूप में देखता है। तो ये चित्त की वृत्ति है, चित्त की स्थितियां हैं, जो कि आपको तरह तरह के भेद दिखाएंगी एक अस्तित्व में, अद्वैत अस्तित्व में। बहुत आसान है देखना इसको, इसकी व्याख्या जरा कठिन है, क्योंकि भाषा इतनी परिष्कृत नहीं है हमारी कि उसकी बहुत अच्छे से व्याख्या कर सके। इसीलिए इसको सिर्फ अद्वैत कह के छोड़ दिया जाता है कि दो नहीं है, आप बस बाकी आपको अनुभव करना पड़ता है। यदि क्योंकि सारे अनुभव चित्त के माध्यम से होते हैं तो आपको चित्त को वहाँ से हटाना पड़ता है, तब आपको अस्तित्व दिखेगा। तो इसीलिए योग में कहा गया है कि चित्त वृत्ति जब समाप्त होती है तो आपको योग का अनुभव होगा। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप देख रहे हैं कि आपको सिर्फ इतना ज्ञान होना चाहिए कि अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही हैं, सिर्फ अनुभव क्रिया है या अस्तित्व ही है। और ये ज्ञान कैसे होगा, जब आप प्रश्न करेंगे, ज्ञान की शुरुआत प्रश्न से होती है जैसा कि आपने पिछली बार देखा। तो सात तरह के प्रश्न मैंने आपको बताए, यदि आप वो प्रश्न करेंगे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन और कितना, जितने जो भी भाग किए हैं ये सात प्रश्न, सब पर आप करके देखें, और जैसा कि हमने किया पिछले आधे घंटे में, आपको सबके उत्तर एक ही आएंगे, तो काफ़ी आश्चर्यजनक परिणाम आपको मिलेगा कि सब एक ही दिखेंगे। लेकिन आप देखेंगे जब अनुभव होगा तो चित्त हमेशा उसका भेद कर देगा, चित्त हमेशा उसको दो में बांट देगा, अनुभव और अनुभवकर्ता में। अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद जानने की कोशिश करेंगे, कितने दूर हैं, कितनी दूरी है इसमें, कितनी भिन्नता है, तो आपको कुछ सार्थक उत्तर नहीं मिलेगा इस प्रश्न का। आप देखें कि जब भी अनुभव है वहाँ पे अनुभव करता है, जब भी अनुभव करता है वहाँ पे अनुभव है, सिर्फ अनुभव अनुभवकर्ता की अनुपस्थिति में कभी नहीं मिलेगा, या अनुभवकर्ता किसी अनुभव की अनुपस्थिति में नहीं मिलेगा। हमेशा कोई अनुभव हो रहा होगा, तभी आप कह पाएंगे कि हाँ इस अनुभव का अनुभव करता है, ये उसकी परिभाषा में ही है, ये जरूरी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों एक ही है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे अनुभव और अनुभवकर्ता अस्तित्व के दो चेहरे हैं। इन ज्ञान मार्ग पर जो हमने तरीके ढूंढे पिछले तीन सभाओं में, हम इसकी चर्चा करते आ रहे हैं कि ज्ञान कैसे होता है और सत्य का कैसे, सत्य और असत्य में कैसे भेद करना है, और ज्ञान की दीक्षा या ज्ञान के प्रारंभ कैसे होता है प्रश्न से। तो यदि आप ये जो तकनीकें जो हमने ढूंढी पिछले तीन सभाओं में उनका प्रयोग करेंगे अस्तित्व, अनुभव, अनुभव क्रिया और अनुभवकर्ता पर, तो आप देखेंगे कि वो एक ही है। हमेशा दो दिखते हैं क्योंकि चित्त के माध्यम से होता है हर अनुभव, चित्त नहीं तो अनुभव भी नहीं होगा। अज्ञान यही है कि मैंने जो चित्त ने मुझे जो कहा है वो मैंने मान लिया है, यही अज्ञान है। मैंने कभी उसको अपने अनुभव के प्रकाश में देखने की कोशिश नहीं की, सिर्फ मान भर लिया जो चित्त ने कह दिया। चित्त ज्ञान का माध्यम है, इसीलिए उसका उपयोग है। लेकिन जब मूल प्रश्न आते हैं तो आपको चित्त नहीं, उसकी धारणाएं या उसकी भाषा को नहीं स्वीकार करना है, आपको अपने अनुभव को देखना है और प्रश्न करना है, क्योंकि बिना प्रश्न के ज्ञान नहीं होगा। तो हमने वो प्रश्न किए, इन सारी धारणाओं के ऊपर हमने प्रश्न किए और हमने उनको काटा प्रश्नों से। काटने के बाद कुछ नहीं बचता, आप देखिए उसमें सिर्फ अद्वैत बचता है, अस्तित्व अद्वैत है, इतना ही बचता है। इसके बारे में मनन करना चाहिए, मनन में आपको ये प्रश्न दोबारा बार बार उस पर प्रश्न करना है, उसको प्रश्न के कटघरे में लाना है, इन धारणाओं को कि बता तो दिया इन्होंने कि अस्तित्व है और अनुभव है और ये है, लेकिन आपको देखना है कि स्वयं के दृष्टि में, आपकी खुद के दृष्टि में वो सही है या नहीं, और फिर आप सत्य असत्य में भेद कर सकते हैं। आपके अपने सत्य के मानदंड होने चाहिए। अद्वैत में जो सत्य के मानदंड एक ही है कि जो चलित है वो असत्य है, जो कि नहीं बदलता वो सत्य है। परम सत्य यहाँ पर आपको मिलेगा यदि आप यह मानदंड अस्तित्व के ऊपर आप उपयोग करते हैं। एक तरफ अनुभव है जो कि हमेशा बदलता रहता है, हमने तीन तरह के अनुभव देखे, लेकिन इन तीनों में आप देखेंगे बदलाव है, कोई भी अनुभव जो है स्थायी नहीं है। इस यदि आपका सत्य का ये मानदंड है कि जो चीज़ बदलती है वो असत्य है, जो नहीं बदलती वो सत्य है, तो आप देखेंगे सारा का सारा अनुभव असत्य है। और अनुभवकर्ता आप देखेंगे कभी नहीं बदलता, क्योंकि वो कहाँ है, कब है, क्यों है, कैसे है, इन प्रश्नों का कोई अर्थ नहीं है इसके बारे में। यदि आप उसका रंग रूप पूछने जाएंगे तो कोई उत्तर नहीं आता, उसका स्थान देश काल पूछने जाएंगे कोई उत्तर नहीं आता। अनुभवकर्ता चिरस्थाई है और अनंत है, हमेशा से है, तो वही एक चेहरा है अस्तित्व का जो नहीं बदलता। आपका यदि मानदंड है सत्य का कि जो नहीं बदलता वो सत्य है, तो आप देखेंगे कि अनुभवकर्ता ही सत्य है, इसके अलावा कुछ और सत्य नहीं है। तो बड़ी आश्चर्यचकित करने वाला परिणाम निकलता है यदि आप ये मानदंड बनाएं। तो यदि आपका मानदंड है कि जो भी अनुभव हो रहा है वो सत्य है, तो फिर हर चीज़ जो है सत्य में आ जाएगी, कुछ भी असत्य नहीं होगा, जो कि ठीक नहीं है। अस्तित्व के ऊपर सत्य असत्य का भेद करना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि जो असत्य है उसका भी अस्तित्व है, इसीलिए मैं उसको असत्य में के वर्ग में डाल पा रहा हूँ। यदि वो अस्तित्व में ही नहीं होता तो उसको मैं असत्य क्यों कहता, कम से कम एक मानसिक धारणा के रूप में उसका अस्तित्व होगा। सत्य असत्य भी अर्थहीन है, इसीलिए मैंने उस दिन कहा कि सत्य असत्य के फेर में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत और स्वैच्छिक होता है इसका वर्गीकरण। आप अनुभव को देखें, आपका अनुभव क्या कहता है, दृष्टा और दृष्टि में कोई भेद नहीं है, और उसको दृष्टि को असत्य कहना आपका आपका अपना कारण है, स्वैच्छिक आपका कारण है, आपका मानदंड है। जो जगत है, जो चित्त है और शरीर है, ये तीन तरह के अनुभव है, तो शास्त्रों में इनको माया कहा गया है, मिथ्या कहा गया है, या फिर असत्य कहा गया है। जो इसका अनुभव करता है, जो चेतना, जो अनंत चेतना इसका अनुभव करती है, उसको सत्य कहा गया है। तो ये आम लोगों की भाषा हो गई, आम शब्द हो गए। जो असत्य है उसका भी अस्तित्व है, इसीलिए तो उसका अनुभव हो रहा है, तो उसको असत्य कहना जरा सा ठीक नहीं होगा, लेकिन उसका कारण है उसको असत्य कहने का, क्योंकि जो अनुभव के पीछे जो है एकता है, और वो एकता अनुभव करता ही है। अनुभव की चेतना अनुभव करता है, और अनुभव की चेतना ही अनुभव है, वही अनुभव क्रिया है। यदि आप कहते हैं कि अनुभवकर्ता भिन्न है अनुभव से, तो सत्य असत्य है, नहीं तो नहीं। द्वैत भी अद्वैत के अंदर आता है, और द्वैत में आप सत्य असत्य का मानदंड उपयोग करेंगे तो सारा का सारा अनुभव असत्य हो जाता है या माया हो जाता है। माया का अर्थ है कि जो नहीं है, मां या जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होना। तो हमें अनुभव तरह तरह के रूप में दिखाई देते हैं लेकिन उनके पीछे जो है अनुभव करता ही है, इसीलिए उसको माया कहा गया। एक अनुभव क्रिया भर है जो कि बदलती है और वो बदलाव चित्त के कारण से है। एक बड़ा विषय है कि बदलाव क्यों है अनुभव में। तो चित्त सत्य को असत्य में बदल देता है ये चित्त की वृत्ति है, चित्त माया का कारण है। या फिर तकनीकी भाषा में कहे तो अस्तित्व के ऊपर माया का प्रक्षेपण उसको असत्य में बदल देता है, ये चित्तवृत्ति है। जब ये वृत्ति शांत हो जाती है, जब ये वृत्ति नष्ट हो जाती है तो आपको सब कुछ जैसा है वैसा दिखाई देता है, यानी कि अद्वैत के रूप में दिखाई देता है।
आप सुन रहे थे बोधि वार्ता तरुण प्रधान के साथ। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस श्रृंखला के अगले भाग में। नमस्कार।